सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वर्षायाणं नमो लोये सवसाहूणं अन्ताय मच्छरहिया जाय जरामरणनन्तपोरढा संसारलयातमहं जेनच्छिन्नाजिनं वन्दे। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधौला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। तृतीय पुस्तक जो तृतीय अर्थाधिकार स्थिति विभक्ति नामक, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 49 पर आ गए। 49 यहाँ बात अंतर की चल रही है। 47 पृष्ठ के अंतिम लाइन से हमने अंतर की बात शुरू की थी। पहले हमने काल देखा था, उत्कृष्ट स्थिति का लगातार काल और जघन्य का लगातार काल। अब यहाँ अंतर देख रहे हैं। अंतर का अर्थ होता है जब उत्कृष्ट स्थिति है उसके पश्चात अनुत्कृष्ट हो जाए और फिर दोबारा उत्कृष्ट हो, तो बीच में कितना काल जा सकता है उसको अंतर कहेंगे, गैप। तो उसमें जघन्य से जघन्य अंतर कितना हो सकता है और अधिक से अधिक अंतर कितना हो सकता है, उसमें भी पहले में पहले उत्कृष्ट अंतर की बात, उत्कृष्ट अंतरानुगम जब कहते हैं, उत्कृष्ट अंतरागम है ना, उत्कृष्ट स्थिति का अंतर की प्ररूपणा, उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य अंतर भी कहेंगे और उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतर भी कहेंगे। यानी लगातार उत्कृष्ट स्थिति न हो न हो न हो न हो तो कितने काल तक हो सकती है। तो उसको हमने देखा था कि जघन्य अंतर कितना है उसका, उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य अंतर कितना हो सकता है। एक समय होगा कि नहीं होगा, तो कहते नहीं, अंतर्मुहूर्त तो उत्कृष्ट स्थिति के पश्चात, काल की बात नहीं है। काल एक समय और अंतर्मुहूर्त देखा था, क्योंकि लगातार उत्कृष्ट स्थिति का बंद करे कोई जीव तो अंतर्मुहूर्त तक होता है, पश्चात अनुत्कृष्ट होता है। अब ऐसा सोचना, जब अनुत्कृष्ट का बंद करने लगे तो दोबारा उत्कृष्ट बंद कितने काल के बाद हो सकता है, क्या एक समय के बाद हो सकता है, तो नहीं हो सकता। जैसे उत्कृष्ट का बंद एक समय के लिए भी हो सकता है, ऐसे अनुत्कृष्ट का बंद उत्कृष्ट के पश्चात एक समय ही हो और दूसरे समय और फिर दोबारा उत्कृष्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जघन्य में जघन्य अंतर, यानी एक बार उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हो जाए तो लगातार अंतर्मुहूर्त तक अनुत्कृष्ट ही रहेगा और पश्चात उत्कृष्ट हो जाएगा, उसको कहेंगे उत्कृष्ट का जघन्य अंतर। उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य अंतर काल कितना है, तो अंतर्मुहूर्त है। तो ये अंतर्मुहूर्त हमने देखा था, ये जघन्य अंतर काल। और लगातार उत्कृष्ट न हो, उत्कृष्ट न हो, अनुत्कृष्ट ही रहे, यानी उत्कृष्ट का अंतर ही चलता रहे, तो अधिक से अधिक कितना होगा, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। क्यों? क्योंकि वो एक इंद्रिय में चला जाएगा तो उत्कृष्ट का बंद होगा ही नहीं बीच में कभी, तो उसको कहेंगे उत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर, उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतर। हम तो अभी उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं, अभी जघन्य की बात नहीं उठाई है, ये ओघ की अपेक्षा हो गई। अब अनुत्कृष्ट का अंतर कितना हो सकता है, हाँ वहां एक समय होगा क्योंकि उत्कृष्ट का बंद एक समय के लिए हो सकता है, तो अनुत्कृष्ट का अंतर कितना है? तो जघन्य अंतर एक समय, और उत्कृष्ट अंतर कितना होगा? अंतर्मूर्त, क्योंकि उसके बाद अनुत्कृष्ट ही होगा। जब हम अंतर घटित करते हैं तो उसके अपोजिट का काल गिनना, समझ में? अनुत्कृष्ट का अंतर है ना, उत्कृष्ट का लगातार का काल। उत्कृष्ट का काल कितना देखा हमने? जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त तक ही उत्कृष्ट का बंध हो सकता है। तभी अनुत्कृष्ट में अंतर कितना पड़ा? तो एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक, उसके पश्चात नियम से वो अनुत्कृष्ट अनुत्कृष्ट ही रहेगा। इतनी बात ओघ की अपेक्षा हमने देखी। अब आदेश की अपेक्षा देखना है, जो हमने 48 पृष्ठ से नीचे के 84 नंबर का बिंदु हम देख रहे थे, वहां से देखते हैं। वो एक पैराग्राफ हमने कल पढ़ा था, उसको दोबारा पढ़ेंगे। ओघ की बात ख्याल में आ गई ना, ओघ की अपेक्षा। अब आदेश मैंने अपने अपने नरक गति में, अपने अपने इंद्रियों में जो कुछ है, तो वहां की जो उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो सकती है और किसके हो सकती है, और फिर लगातार उसका अंतर पड़े तो कितना पड़ेगा, उसकी बात यहाँ अभी चलेगी। तो आदेश की अपेक्षा ये समझ में नहीं है तो दोबारा पूछना, चार बार भी पूछना, कोई बात नहीं। हाँ, अरविंद भाई को और इनको, देवेंद्र भाई को ऐसा लगता है किसी को नहीं समझ में आ रहे, बहुत जरा आस्ते आस्ते समझ में नहीं, इन लोगों को समझ में आ रहा है, आप ही को नहीं आ रहा है, ऐसा कहते वो लोग। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, स्लोली चलेंगे। हमें कुछ उतावल तो है ही नहीं है कि हमको जल्दी नहीं है कि इतनी बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, ऐसी कोई बात है नहीं। वो कहते हैं, मैंने उतावल कहा ना, मराठी शब्द आ गया। उतावलिया, उतावलिया गुजराती में है क्या? आदेश की अपेक्षा नारकियों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य अंतर का, देखो हमने ओघ में कितना देखा था? अंतर्मूर्त। तो यहां भी अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतरकाल कितना होगा? तो कुछ कम 33 सागर है, क्योंकि यहाँ नारकी को तो नारकी रहते हुए ही ये बात चल रही। उत्कृष्ट अंतर यानी फिर दोबारा उसको उत्कृष्ट बंद करना चाहिए, तो शुरू में किया था, बाद में अनुत्कृष्ट चला, और फिर आखिर में जाकर फिर उत्कृष्ट किया, तब हम कहेंगे उसका अंतर हुआ। तो 33 सागर यहाँ की उत्कृष्ट आयु है, उसमें कुछ कम करना। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल ओघ के समान है। अनुत्कृष्ट का अंतर यानी जब अनुत्कृष्ट नहीं है, उत्कृष्ट का बंद हो रहा है, तब उत्कृष्ट स्थिति भी होती है। तो एक समय जघन्य और उत्कृष्ट है अंतर्मूर्त। पहले नरक से लेकर सातवें नरक तक प्रत्येक नरक में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल कितना है? तो जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त, ये तो सब जगह अंतर्मूर्त वाला जघन्य तो घटित होगा। और उत्कृष्ट अंतर कितना होगा? कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण, उस नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति है उससे कुछ कम, क्योंकि शुरू में उसने पर्याप्त होने पर उसने उत्कृष्ट बंद किया था, फिर अनुत्कृष्ट करने लगा, स्थिति भी अनुत्कृष्ट हुई, लगातार अनुत्कृष्ट अनुत्कृष्ट रही, और लास्ट में जाकर फिर उत्कृष्ट किया। तो कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण होती है। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल ओघ के समान है, यानी कितना है भानु बहन बताओ आप? जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, ये ख्याल में आई बात? जब तक वो उत्कृष्ट का बंद करता रहे तब तक अनुत्कृष्ट का अंतरकाल होता है। अब यहां से पढ़ेंगे, अभी हम 49 पृष्ठ पर पंचेंद्रिय तिर्यंच, अभी तिर्यंच की बात चल रही, तिर्यंच गति की, नारकियों की बात बता दी, तिर्यंचों में जो अलग अलग भेद है उसकी अपेक्षा बात चलेगी। तो पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति जीवों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, जैसे अन्यत्र हमने देखा था। और उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक्त्व है। अभी विशेषार्थ में जो बताया है कि भोग भूमि को यहाँ नहीं लेना, तो वो तीन पल्ले वाला नहीं लेना, तो यहाँ पृथक्त्व कोटि में कितने लेने? हाँ देवेंद्र भाई, आप कितना कहते? 96 पूर्व कोटि लेने पड़ेंगे। पंचेंद्र सामान्य पहले लिया है 96, क्योंकि हम 95 लेकर तीन पल्ले लेते थे, तीन पल्ले को नहीं लेना है तो 96 पूरा लेना पड़ेगा। कितने पूर्व कोटि की बात चल रही है ना अपनी, और पंचेंद्रिय पर्याप्तों में अगर लेना है तो वो तो बीच वाला अपर्याप्त नहीं ले सकते, तो 48 पूर्व कोटि। और पंचेंद्रिय तिर्यंश योनिमति में, क्योंकि हम बीच में हम संगी असंगी दोनों लेना है, इसलिए 8 उसके 8 उसके, संगी संगी तिर्यंश योनिमति और असंगी पंचेंद्रिय वाला, हम पढ़ेंगे इसको विशेषार्थ में। तो उत्कृष्ट अंतरकाल, यानी शुरू में उसने उत्कृष्ट स्थिति बांधी, फिर बीच में अनुत्कृष्ट और फिर दोबारा उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतरकाल हुआ, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल ओघ के समान है। जघन्य कितना हमने देखा? एक समय, और उत्कृष्ट अंतर्मूल। इसी प्रकार अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य, उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य होता है अंतर्मूर्त। दोबारा, उत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल कितना है? तो जब तक वो दोबारा उत्कृष्ट स्थिति नहीं बांध सकता, तो वो अंतर्मूर्त होता है। उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य अंतर एक अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट अंतर जो अपनी अपनी स्थिति होगी मार्गणा की, उसको हम लेंगे। कुछ कम उसमें जो, तो समझ लेना हर जगह कुछ कम होगा। अब यहाँ क्या घटित कर रहे देखिए, ये तो हमने अनुत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल कितना है, तो ओघ के समान है। यानी अनुत्कृष्ट कब नहीं है? जब उत्कृष्ट का बंध एक समय के लिए हो सकता होता है, तो अनुत्कृष्ट का अंतर एक समय होगा, और उत्कृष्ट का बंध लगातार अंतर्मूर्त है, तो वो अनुत्कृष्ट संग अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर हो जाएगा। उत्कृष्ट की बात पहले सोचना, उत्कृष्ट का बंध होगा तो एक समय, या लगातार होता रहे तो अंतर्मूर्त, वही अनुत्कृष्ट का अंतर कहलाएगा। इसी प्रकार सामान्य मनुष्य, अब सामान्य मनुष्य में उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य अंतर, जैसे हर जगह हम देखें उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य अंतर कितना है? अंतर्मूर्त। और उत्कृष्ट अंतर कितना होगा? अभी हम सामान्य मनुष्य कहेंगे तो 48 भाव करेंगे उसके, वो तीन पल्ले वाला नहीं लेना, बाकी लेना है। पर्याप्त मनुष्य, जब पर्याप्त मनुष्य कहते हैं तो तीनों ही वेद वाले पर्याप्त मनुष्य ले लेंगे हम, 24 हो जाएंगे। और मनुष्यनी तो 8 हो गए भाव, उसमें कुछ कम तो समझ लेना, शुरू में किया बंद उत्कृष्ट और फिर लास्ट में जाकर किया। पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्तक जीवों में, ये पढ़ना है आपको विशेषार्थ में, विशेषार्थ का थोड़ा हम देते हैं, मनुष्य तक हम पढ़ेंगे, फिर दोबारा जाएंगे देवगति की बात, नहीं देवगति नहीं, सामान्य मनुष्य पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्त। देखो विशेषार्थ पेज नंबर 50, हम सेकंड पेज पर 50 नंबर के पृष्ठ पर, आदेश से अंतरकाल का खुलासा करते समय जहां जो विशेषता होगी उसी का स्पष्टीकरण करेंगे, शेष का खुलासा ओघ के समान जानना, जो पहले कराए वैसे। सामान्य से नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है, अतः यहाँ उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतर कह रहे हैं, यानी एक बार उत्कृष्ट स्थिति बांधी, फिर लगातार अनुत्कृष्ट बांधता रहे और जो स्थिति है वो भी एक एक गलती रहेगी, तो उसका उत्कृष्ट का अंतर कितना होगा? कुछ कम 33 सागर प्राप्त होगा। यानी अंत में जाकर फिर दोबारा उसने उत्कृष्ट स्थिति बांधी, तब अंतर समाप्त हुआ। अंतर घटित करना है तो लास्ट में फिर उत्कृष्ट स्थिति भी बांधना चाहिए। खाली उसने एक बार बांधा और छोड़ दिया तो उसको अंतर नहीं कहलाएगा। उसी मार्गणा में रहते हुए दोबारा जब वो बांधेगा तब उसको कहेंगे अंतर समाप्त हुआ। तो ऐसा अधिक से अधिक अंतर कितना होता है? तो कुछ कम 33 सागर प्राप्त होता है। ये सामान्य नारकियों की बात करो या सातवें नरक की बात करो, यही है। इसी प्रकार प्रथमादि नरकों में भी उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतर काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण घटित कर लेना चाहिए। जैसे वहां एक सागर है उत्कृष्ट, तो उसका कुछ कम एक सागर कहेंगे। अब इसके बाद हमने पंचेंद्रिय तिर्यंचों की बात देखी थी। पहले सामान्य पंचेंद्रिय तिर्यंच लिया था, उसमें संगी असंगी पर्याप्त पर्याप्त सब आ गए। सामान्य पंचेंद्रिय तिर्यंचों की उत्कृष्ट स्थिति 97 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्य है, 95 चाहिए। उत्कृष्ट स्थिति 95 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्य है, क्योंकि हम देखते ना टोटल कितने भव होते हैं, 96। अभी वो उत्कृष्ट वाले हम देखेंगे, पूर्व कोटि वाले। तो यहाँ जो 3 उत्कृष्ट स्थिति किसकी कही? सामान्य तिर्यंच पंचेंद्रियों की। उत्कृष्ट घटित करना, इसलिए आखिर वाला भव 3 पल्य का लिया। ये कितनी स्थिति है उसको पहले बता रहे हैं, अंतर नहीं बता रहे। अंतर में तो वो 3 पल्ले वाला नहीं लेंगे हम। और पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों की उत्कृष्ट स्थिति, अभी अकेले पर्याप्त लेना, बीच में अपर्याप्त नहीं लेना। 47 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ले है, टोटल भाव 48 होते हैं, उसमें लास्ट वाला 3 पल्ले वाला होता है। और योनिमती तिर्यंचों की उत्कृष्ट स्थिति, लगातार योनिमती तिर्यंच ऐसे ही जन्मे तो 15 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्य है, किंतु अभी यहाँ नियम बता रहे हैं, भोग भूमि में उत्कृष्ट स्थिति नहीं प्राप्त होती। अतः प्रत्येक के काल में से 3 पल्य कम कर देना चाहिए। 3 पल्य कम करो और वहां एक पूर्व कोटि रखो, अकेला 3 पल्य नहीं कम करना। हाँ, उसके बदले यानी हमने 95 पूर्व कोटि और 3 पल्ले देखा था, उसके बदले 96 पूर्व कोटि कहना चाहिए। और इस प्रकार जो प्रत्येक का पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण काल शेष रहता है, उसको सामान्य से कथन क्या करेंगे? पूर्व कोटि पृथक्त्व। पृथक्त्व यानी अनेक, पृथक की वैल्यू अलग जगह अलग अलग होगी, जो हम बहुत बार देख चुके हैं। 96 को भी पृथक्त्व कहेंगे, 48 को भी पृथक्त्व कहेंगे, ये 16 को भी पृथक्त्व कहेंगे। हाँ, 3 से 9 पृथक्त्व तो जनरल कथन है, वो तो सामान्य से, परंतु यहाँ विशेष की बात है, तो यह अनेकता सूचित करने वाला ये शब्द है पृथक्त्व। तो इस प्रकार जो प्रत्येक का पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण काल शेष रहता है, वही उनके उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतरकाल जानना चाहिए। यानी इतनी लगातार स्थिति है उनकी, शुरू में उत्कृष्ट बंद किया, उत्कृष्ट स्थिति पाई, फिर अनुत्कृष्ट लगातार रहा, और उस स्थिति के अंत में जो भव, उसके अंत में जाकर उसने फिर दोबारा उत्कृष्ट का बंद किया। इसमें भी प्रारंभ का पर्याप्त होने तक का काल और कम कर देना चाहिए। क्या कहते हैं? पहला जो पूर्व कोटि का भव लिया, उसमें पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए जितना अंतर्मुहूर्त काल लगेगा, उसको कम करना। क्यों? अपर्याप्त दशा में इतना उत्कृष्ट बंधन नहीं होता, अपर्याप्त अवस्था। हाँ, जिसका मूल में निर्देश नहीं किया, ये बात नहीं बताई है फिर भी समझ लेना चाहिए। वहां तो सामान्य से कथन इतना ही है, पूर्वकोटि पृथक्त्व। इसी प्रकार मनुष्यत्रिक के, जयाबेन मनुष्यत्रिक कौन कौन है याद है आपको? सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, पंचेंद्रिय तो तिरियंचों के लिए कहना, हाँ पर्याप्त मनुष्य और मनुष्य ने, और मनुष्यत्रिक के उत्कृष्ट स्थिति का, उत्कृष्ट अंतरकाल। अभी जघन्य अंतरकाल हमने देखा कितना होता है, अंतर्मूर्त। उत्कृष्ट में ही अपनी अपनी स्थिति लेनी है, उत्कृष्ट अंतरकाल, पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण लेना चाहिए। यहाँ सामान्य मनुष्य की 47, यहाँ तो 48 लेंगे हम, वहां तो 47 पूर्व कोटि और 3 पल्ल्य, तो 3 पल्ल्य कम किया, परंतु वहां 1 पूर्व कोटि तो रख सकते हैं हम, समझ में ना? यहाँ उन्होंने वो 3 पल्ल्य घटाकर केवल 47 रखी है, परंतु हम 48 कहेंगे उसको। हाँ बिल्कुल, पूर्व कोटि पृथक्त्व में 48 पूर्व कोटि लेना, क्योंकि भोग भूमि में नहीं होती, परंतु यहाँ कर्म भूमि के उत्कृष्ट भाव इतने होंगे 48। यानी सामान्य मनुष्यों के लिए 48, पर्याप्त मनुष्य की 23 लिखा है, परंतु 24, वो 23 उन्होंने 3 पल्ल कम करके लिखा था, और मनुष्य ने की 8 चाहिए। अभी यहाँ पर पूर्व कोटियां लेनी चाहिए, पंचेंद्रिय, अभी इसके आगे का हमने नहीं पढ़ा है। तीन पल्ले को तो लेना ही नहीं है, अड़तालीस बार पूर्व कोटि आयु रह सकती है। 48 पूर्व कोटि का अर्थ क्या? एक बार तो एक पूर्व कोटि ही लेनी है, भूभूमि को लेना ही नहीं बीच में, और कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु लेनी है, तो 48 बार लगातार वो उस पर्याय में हुआ तो ये 48 पूर्व कोटियां हुई। आपका क्या प्रश्न है? हाँ, एक एक कम किया, क्योंकि ये विशेषार्थ में लिया है, उन्होंने शायद 3 पल्ले कम किया, इतना ही लिया उसमें। 3 पल्ले कम करेंगे तो 1 पूर्व कोटि तो रख सकते हैं ना वहां पर, उनका कथन पूर्व कोटि पृथक्त्व इतना ही है, तो जहां जो अधिक से अधिक पॉसिबल है उसी को लेना है। ऐसा लिखेंगे ये अपने लिए, वहां वो तो करेक्शन के रूप से नहीं, मगर 3 पल्ले प्रत्येक के काल में से 3 पल्ले कम कर देना चाहिए, और एक एक पूर्व कोटि रखना चाहिए उसके बदले। हाँ नहीं नहीं आपका ऐसा प्रश्न है कि जब 95 पूर्व कोटि हो जाती है तो अंतिम भाव 3 पल्ले का ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं? बिल्कुल नहीं है। अरे 95 पूर्व कोटि भी नहीं मिले, एक ही बार एक पर्याप्त भाव मिले या जो कोई मिले, और वो भी पूर्व कोटि तो अधिक से अधिक आयु है, हो सकता है 2-4 साल की भी आयु प्राप्त हो किसी जीव को। अधिक से अधिक कितनी उत्कृष्ट हो सकती है? तो पूर्व कोटि के बदले हमने 3 पल्ले लिया था, अब 3 पल्ले के बदले पूर्व कोटि रखना चाहिए वहां पर। हाँ, मैक्सिमम 96, उन्होंने तो पूर्व कोटि पृथक्त्व में उसको ले लिया है। विशेषार्थ कहते समय उन्होंने केवल 3 पल्ले को घटाया, परंतु पूर्व कोटि को रह गया, परंतु हम समझ सकते हैं, हमें तो उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो सकती है उसको लेना है। भोग भूमि को छोड़कर, भोग भूमि के अलावा कितनी हो सकती है? कर्म भूमि लगातार रहे, भोग भूमि योग्य उसके परिणाम न हो, तो उसके यहाँ एक पूर्व कोटि और बढ़ेगी। तो यहाँ जो 3 पल्ले को कम कर देना चाहिए लिखा है ना, और अपने लिए वो अप लिखना है अपने ब्रैकेट में करके, एक पूर्व कोटि बढ़ाना। इसलिए 96 पूर्व कोटि होगी, 48 पूर्व कोटि होगी और 8 पूर्व कोटि होगी, वो तीरियंचों में। अब यहां तो हमने मनुष्य तक की बात पढ़ी और फिर दोबारा पीछे जाते अपने विषय पर। पंचेंद्रिय लब्धियां पर्याप्त हमने पढ़ा नहीं है, वो हम पढ़ेंगे 49 पृष्ठ पर। हमने मनुष्य तक की बात पढ़ी थी और उसका विशेषार्थ देखा, थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसका विशेषार्थ देखेंगे। अब ये पंचेंद्रिय तीरियंच लब्धियां पर्याप्तकों की बात यहां पढ़ रहे हैं, मिला ना चौथी लाइन। पंचेंद्रिय तीरियंच लब्धि अपर्याप्तक जीवों में मोहनीय की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल नहीं है। एक पहले ऐसा क्यों कहा उसको देखेंगे। उत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल कब होता है? तो पहले उत्कृष्ट स्थिति थी, फिर अनुत्कृष्ट में चला गया और फिर दोबारा उत्कृष्ट हो तो, या अनुत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल कब होगा? अनुत्कृष्ट थी, बीच में उत्कृष्ट हुई और फिर अनुत्कृष्ट हुई, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि उत्कृष्ट स्थिति का बंद होना चाहिए। तो पंचेंद्रिय लब्धियां पर्याप्तकों में तो नहीं होता है, इसलिए क्या कहा? उत्कृष्ट का भी अंतर नहीं है और अनुत्कृष्ट का भी अंतर नहीं है। उत्कृष्ट का अंतर होने के लिए उत्कृष्ट का बंद होना चाहिए, फिर दोबारा नहीं हो और फिर दोबारा हो जाए, और अनुत्कृष्ट के लिए अंतर, अनुत्कृष्ट था, बीच में एक बार उत्कृष्ट होना चाहिए, परंतु इनमें तो उत्कृष्ट बंद है ही नहीं। हाँ, उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट जो है, सत्ता की बात चल रही है यहाँ पर, सर्वत्र सत्ता में है, क्या दोबारा लौट कर फिर उसका? हाँ, तो अंतर था। हाँ, क्योंकि लब्धि अपर्याप्तकों के योग्य हमने देखा था मार्गणाओं में, जब हम उत्कृष्ट स्थिति देखते थे तो उस मार्गणा के योग्य उत्कृष्ट स्थिति देखते थे। तो हम थोड़ा सोचते हैं पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्तकों में उत्कृष्ट किसके होगा, याद है? हाँ बराबर है। देव अपर्याप्तों में नहीं आते, यहाँ पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्तकों की बात चल रही है और वहां एकेंद्रिय की बात चल रही है। अपनी मार्गना पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्तकों की चल रही है तो कितना होता है उत्कृष्ट स्थिति, कितनी है वहां पर? नहीं, एक अंतर्मुहूर्त कम, 70 कोड़ाकोड़ी सागर। अश्विन भाई ने बताया था, मैं तो मैंने रुका है कि और किसी को याद है क्या, पूछ रही थी मैं। देखो संग, क्योंकि हमने क्या देखा था, कोई संगी पंचेंद्रिय उत्कृष्ट स्थिति बांधता है। अब ये लब्धि अपर्याप्तक है, देवनार की तो उसमें आएंगे नहीं, मनुष्य तीरियंच ही आएंगे। अब तीरियंचों में उत्पन्न होना है पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तकों में, तो पहले उत्कृष्ट स्थिति का बंध किया था, फिर अंतर्मूर्त के बाद वो मरकर आया है, ऐसा जीव लिया हमने पहले देखा था। वो इमीडिएटली मरकर नहीं आता, उसमें अंतर्मूर्त बीच में चला जाता है, ऐसा जीव यहां आया है। तो अंतर्मूर्त कम, 70 कोड़ाकोड़ी उसकी उत्कृष्ट स्थिति उस पर्याय के योग्य है। अब उसके बाद लगातार क्या होगा, एक एक गलता चला जाएगा और वो स्थिति तो कम बांधेगा, अपर्याप्तों के योग्य ही बांधेगा। इसका अर्थ क्या है, दोबारा उसको उत्कृष्ट स्थिति उतनी होने का चांस है ही नहीं, माइनस अंतर्मूर्तता। वो दोबारा हो सकती है तो ही अंतर्घटित होगा। 70 कोड़ाकोड़ी माइनस अंतर्मूर्त इतना भी नहीं होगा। हाँ, वो दोबारा नहीं होगा क्योंकि उनका जो स्थिति बंध है वो कम होता है। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि, मनुष्य तीरियंच हो सकता है, परंतु अभी यहाँ लब्धि अपर्याप्त में आया ना, पंचेंद्रिय तीरियंच लब्धि अपर्याप्तकों में आया है, उसका जो उसके योग्य उत्कृष्ट स्थिति बंध है वो इतना नहीं है। वो क्यों था, क्योंकि वो तो संगी पंचेंद्रिय में से बांध कर आया था, ऐसा दोबारा तो घटित नहीं होगा, पहले समय में तो घटित हुआ था, दूसरे समय से लेकर एक एक तो स्थिति गलेगी उसकी। एक समय के लिए घटित हुआ था उसकी बात, हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि इसके अंतर घटित नहीं होगा। अंतर कब घटित होगा कि दोबारा उतनी होनी चाहिए उसकी, तो हाँ? देखो ये स्वामित्व निकाल, हाँ? कौन से विशेषार्थ में? हाँ, अभी हम पहले स्वामित्व देखो। हाँ, उत्कृष्ट देख रहे हैं ना हम, 17 वाला देख, हाँ 17 पेज। वो किसके होती है ऐसा वहां पूछा था, तो अंतर्मुह किसके होती है वो तो देखेंगे, कितनी होती है तो अंतर्मूर्धकम 70 कोड़ा कोड़ी, वो हमने पहले देखी थी, अध्याय छेद में देखी थी। उत्कृष्ट अध्याय छेद में हमने उसको देखा था, ये विशेषार्थ में 10 नंबर के पॉइंट पर, 10 नंबर में है, 10 पृष्ठ पर 10 नंबर का पॉइंट है, विशेषार्थ में भी लिया है और डायरेक्ट भी लिया है। देखो ऊपर लिखा ना, पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्तको में मौनीय कर्म की स्थिति का उत्कृष्ट काल, उत्कृष्ट काल यानी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है वहां पर, अंतर्मूर्तकम 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। अब ये किसका जीव के होती है, अब ये वहां बताया है पृष्ठ संख्या 17 पर, हाँ वहां पर विशेषार्थ में तो बताया है कि जिस मनुष्य या तिर्यंच ने, क्योंकि पंचेंद्रिय लब्धिया पर्याप्त तिर्यंचों में कौन जन्म सकता है, मनुष्य या तिर्यंच, 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति का बंधक किया, वह यदि मरकर पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धिया पर्याप्तकों में उत्पन्न होता है तो अंतर्मूर्त के पश्चात ही उत्पन्न हो सकता है, इसके पहले नहीं। तो अंतर्मूर्त उसने स्थिति का बंध किया, अंतर्मूर्त तक उत्कृष्ट स्थिति नहीं बांधी है, अंतर्मूर्त तक तो उसका एक एक निषेक गल गया, स्थिति अभी अनुत्कृष्ट बांध रहा है, तो उसकी अंतर्मूर्त स्थिति घट गई। सब जगह सत्ता की ही बात लेनी है, जब हम उत्कृष्ट स्थिति कहेंगे, जघन्य कहेंगे, वो बंध के काल में हो सकती है, ये बात अलग है, परंतु कहीं बंध की कितनी और सत्ता की कितनी है ना, क्योंकि जो बंध का समय है वहां जितनी स्थिति है वो सत्ता की भी उतनी स्थिति है, बंध के काल में सत्ता की स्थिति भी उतनी हो जाती है, क्योंकि सत्ता में ऑलरेडी निषेक है, भले एक इंद्रिय के योग्य हो गए और उस समय बंध हुआ तो सत्ता कितनी हो जाएगी, उत्कृष्ट बंध होता 70 कोड़ा कोड़ी की हो जाएगी। तो बंध के काल में स्थिति कहो, और जब हम कॉमन जब स्थिति कहते हैं और बंद छोटा होता रहे तो जो कोई उत्कृष्ट है उसी को कहेंगे हम, तो हमेशा यहां जो स्थिति बताई है वो सत्ता की ही ली है। अब ऐसा इतना अंतर्मूर्त कम 70 कोड़ा कोड़ी इस लब्धि पर्याप्त की अवस्था में दोबारा हो नहीं सकता, दोबारा स्थिति कब बढ़ सकती है, जब कोई अधिक बंध करे तो। अब हम पीछे विशेषार्थ में 50 पृष्ठ पर क्या लिखा है उसको देखते हैं, जहां तक हमने मनुष्यों की बात पढ़ी थी उसके आगे पढ़ेंगे। पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्तकों के उत्कृष्ट स्थिति उत्पन्न होने के प्रथम समय में ही होती है, ये हमने, क्योंकि वो दूसरे समय में तो एक स्थिति निषेक और गलेगा, पहले समय में उसकी उत्कृष्ट हो सकती है। जो संगी पंचेंद्रिय से मरकर उत्पन्न हुआ है, उसमें भी हमने देखा संगी पंचेंद्रिय में उत्कृष्ट स्थिति बंध किया, फिर अंतर्मूर्त बीत गया, उसके पश्चात मरकर आया, ये बात हमने पहले पढ़ी थी पृष्ठ संख्या 10 पर, फिर 17 पर भी देखी थी। इनके बंध की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति नहीं होती, इसका अर्थ क्या है? बंद की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति नहीं है, तो किस अपेक्षा है? पहले बंद के आया है इस अपेक्षा से, अन्य पर्यायों में बांध कर आया है इसके, क्योंकि इनके लिए बंद है वो सत्ता जितनी है उससे कम होगा। सत्ता है कम होगा किस अपेक्षा से? उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा से। ये रूल नहीं है कि सत्ता से कम बंद होगा, क्योंकि जो एकेंद्रिय में से जघन्य से लेकर आया है उसका तो उससे ज्यादा बंद होगा, उसकी अपेक्षा यहां नहीं चल रही। हम उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट इसमें ही बात चल रही है। यहां पर हम कौन सा जीव ले रहे हैं? पंचेंद्रिय में उत्कृष्ट बांधकर आया हुआ। ऐसा भी कोई जीव हो सकता है कि एकेंद्रियों में हत समुत्पत्ति किया, जघन्य किया और फिर पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्तकों में आया, तो वो तो हम जघन्य में गिनेंगे उसको। हम यहां उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं। ख्याल आया? कहीं से भी उस पर्याय में जीव आ सकता है। अधिक से अधिक स्थिति वाला कौन सा होगा? जो तिर्यंच और मनुष्य 70 कोड़ाकोड़ी का स्थिति का बंद किया, अंतर्मूर्त के पश्चात मरा और इनमें उत्पन्न हुआ। तो ये जो उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है ये बंद की अपेक्षा तो नहीं पाई जाती है। यदि इतना बंद होता हो तो दोबारा भी हो जाता। समझ में आए ना? हाँ, बंद की अपेक्षा नहीं है। नहीं, ये जीव इतना उत्कृष्ट बंद नहीं कर सकते, इतनी बात नहीं है इसमें। ऐसा नहीं कि यहां बंद की अपेक्षा नहीं और अन्य कहीं बंद की अपेक्षा, ऐसी बात नहीं है। ये जीव इतना बंद नहीं कर सकते, इसलिए बंधने की अपेक्षा इतनी उत्कृष्ट स्थिति इन जीवों में नहीं हो सकती। हर जगह जो स्थिति गिनाई है वो सत्ता की ही गिनाई है, परंतु जिन मार्गणाओं में उत्कृष्ट स्थिति बंध सकती है वहां वो 70 कोड़ाकोड़ी वाली या जितनी हो सकती है उस मार्गणा में उतनी गिनाई है। भाई ख्याल में आए बंध का नाम क्यों लिया? हाँ, तो इनके बंध की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति नहीं होती, यानी इनके इतना उत्कृष्ट बंध नहीं हो सकता। अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट इनमें से किसी भी स्थिति का अंतरकाल नहीं होता। यानी ये यदि इतनी स्थिति दोबारा बांध सकते थे तो अंतर्घटित हो जाता, अनुत्कृष्ट हुआ फिर उत्कृष्ट हुआ फिर अनुत्कृष्ट हुआ। इसलिए ना उत्कृष्ट का अंतर्घटित होता है ना अनुत्कृष्ट का अंतर्घटित होता है। अनुत्कृष्ट का अंतर्घटित होने के लिए बीच में एक बार उत्कृष्ट स्थिति बांधनी चाहिए, और उत्कृष्ट का अंतर्घटित होने के लिए पहले समय में उत्कृष्ट था, फिर दोबारा जब उत्कृष्ट बांधेगा तब उत्कृष्ट का अंतर, परंतु लब्धि पर्याप्तकों में तो हो नहीं सकता। अब यहां के आगे जो मार्गणाएं गिनाई है उसको हम फिर पढ़ेंगे। क्या कुछ पढ़ना है? अभी जो मार्गणाएं कही ना इसी प्रकार, तो वो हम पढ़ेंगे फिर दोबारा 49 पृष्ठ पर। अभी कौन कौन सी मार्गणाएं गिनाई है? जैसे पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्तकों में देखा ऐसा ही, और कहां कहां हो सकता है? इसी प्रकार लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य इनमें भी उत्कृष्ट कैसे होगा? वो बांध कर आया है तब उत्कृष्ट होगा पहले समय में, फिर दोबारा इतना बांध नहीं सकता, तो इसमें अंतर्घटित नहीं होगा, यही बात कहना चाहते हैं। इसी प्रकार लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य आनत स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देव, इनका भी उत्कृष्ट कब होता है? पहले समय में। हाँ, जितना कुछ है उनके योग्य जो उत्कृष्ट है, क्योंकि उसके पश्चात तो घटता चला जाता है। सभी एकेंद्रिय, सभी विकलेंद्रिय, यानी ये भी ऐसे भी एकेंद्रिय विकलेंद्रिय लेना जो पंचेंद्रियों में से यहां जन्मे हैं, तो पहले समय में उनका उत्कृष्ट होगा, बाद में तो घटता ही चला जाएगा। पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक, अभी ऊपर लिया था ना, ऊपर क्या लिया था? तिर्यंच पंचिल, हाँ, पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्तक लिया। अब यहां कौन सा लिया? पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक। मनुष्य तिर्यंच दोनों होते हैं, ये मार्गणा अलग ली है इसमें। वहां तो तिर्यंचों की मार्गणा यानी गर्ति की मार्गणा थी, और यहां इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक कह दिया। अभी काय मार्गणा की अपेक्षा पांचों स्थावर का है, भले उनको एक इंद्रियों में लिया था, अभी यहां काय की अपेक्षा डिवीजन है, मार्गणा बदल गए। त्रस लब्धि अपर्याप्तक, ऊपर विकलेंद्रिय तो लिए थे, पंचेंद्रिय भी लिए थे, अब यहां त्रस क्यों लिए? काय मार्गणा में काय मार्गणा की अपेक्षा पांच स्थावर काय और एक तरस काय होते हैं, तो उसकी अपेक्षा भेद बताया। अब योग की अपेक्षा औदारिक मिश्र काय होगी, उनमें भी ऐसा ही समझना ना। औदारिक मिश्र काय योगी में उत्कृष्ट बंध किसके होता है याद है आपको, और कितना होता है? हाँ, सातवें नरक से आया हुआ जाने वाला वैकृत मिश्र होगा, औदारिक मिश्र। आप वैकृत मिश्र की सोच रहे? हाँ, नरक। हाँ नहीं, देवों में से आया हुआ एक समय कम सत्तर कोड़ा कोड़ी हमने देखा। औदारिक मिश्र ने एक इंद्र में भी हो सकता है ना, देव एक इंद्र में जन्मेंगे, एक इंद्र में वही घटित किया था। सातवें नरक से जो है, हाँ मिथ्यात्व में आएगा, उतना ही बंद होने की बात नहीं है, पहले उसके स्वामित्व की बात चल रही है अभी अपनी। यहां जो मार्गणाएं गिनी है उनमें अंतर नहीं है ये बात घटित कर रहे हम, तो अंतर बाद में देखेंगे, पहले में पहले उन किसके होता है ये बात हम देख रहे। 11 पृष्ठ निकालो। हमने देवों में से आने वाले को एक समय कम देखा था, देव तो एक समय में मर सकते हैं, हमने देखा था मनुष्य तीरंज वो तो अंतर्मूर्ति के बाद मरेंगे उत्कृष्ट बंद करके। हमने पंचेंद्रिय अपर्याप्त के लिए जो रूल देखा था, क्योंकि अपर्याप्तों में देव जाते नहीं है, अब यहाँ एकेंद्रिय बादरों में तो जाएंगे, उन्हों वहां भी औदारिक मिश्र होगा। देखो 11 पृष्ठ पर भी है, एकेंद्रियों में वहां लिखा है। अगर आपको औदारिक मिश्र की बात, तो वहां तो औदारिक मिश्र में देव में से भी और नारकी में से भी लिया। आप जो नरक की बात करें ना, वहां एकेंद्रियों में घटित करना था, अगर औदारिक मिश्र में घटित करना है, औदारिक मिश्र तो पंचेंद्रिय में भी होता है एकेंद्रिय में भी होता है, एकेंद्रियों में घटित करना है तो देव में से एकेंद्रिय में लाना, एक समय कम सत्तर कोड़ा पड़े। और अगर देखो यहाँ विशेषार्थ में औदारिक मिश्र की भी बात उठाई है, 11 पृष्ठ का विशेषार्थ पांचवी लाइन 3 4 5। औदारिक मिश्र का योगियों में उत्कृष्ट अध्याच्छेद का कथन करते समय देव और नरक पर्याय से तिर्यंचों में उत्पन्न कराकर कहना चाहिए। वो एकेंद्रियों में उत्पन्न हुआ तो भी तिर्यंच कहलाएगा, पंचेंद्रियों में जाएगा तो भी तिर्यंच कहलाएगा, तो औदारिक मिश्र का योग में वहां उसके योग्य। यहाँ तो तिर्यंचों में, क्योंकि उत्कृष्ट इतने बांधने वाला तिर्यंचों में जाता होगा, यहाँ तो खास बताया है। और मनुष्य वैकृत मिश्र में नारकियों में उत्पन्न किया था, मनुष्य तिर्यंचों में से मरकर। अभी हम ये मार्गणा देख रहे थे 49 पृष्ठ पर, आहारक कायोगी आहारक मिश्र कायोगी उनके योग्य उत्कृष्ट कितना होता है, अंत कोड़ा कोड़ी सागर। और इनको यहां क्यों याद किया? हाँ, अंतर नहीं है इसका, अंतर नहीं इसका अर्थ क्या है, उत्कृष्ट कब होता है, पहले समय में, और जितना अंतर्मूर्त काल है उतना तो एक एक निशे गलता ही चला जाएगा, क्योंकि उनके बंध तो उससे ज्यादा नहीं होता है। सम्यक दर्शन होने के पश्चात अभी जो मुनि का जो बंध है तो घटते चला जाएगा, ये तो मुनि अवस्था है। कार्मण काय योगी उसमें भी पहले हुआ और फिर बाद में उत्कृष्ट होकर अनुत्कृष्ट हो, ये भी घटित नहीं हो सकता, अंतर घटित नहीं होगा। ये ऐसी मार्गणा है जहां अंतर घटित नहीं होता, ना उत्कृष्ट का घटित होता है ना अनुत्कृष्ट का होता है। अपगत वेदी, जब तक अपगत वेदी है तब तक वो नहीं घटित होगा। अकषायी, आभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी। क्योंकि अंतर कब होगा? बीच में उत्कृष्ट हो जाए तब। अब इनके उत्कृष्ट उस मार्गणा में जब शुरू में था उसको उत्कृष्ट कहेंगे, बाद में तो घटता ही चला जाएगा। दोबारा उसी मार्गणा में दोबारा वो उत्कृष्ट बंद नहीं होगा। संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, यथाख्यात संयत, संयता संयत, अवधि दर्शनी, शुक्ल लेशा वाले, सम्यक, सम्यज्ञ हुआ है, सम्यक दृष्टि, वो बीच वाला ज्ञ निकाल देना, सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंगी और अनाहारक जीवों के कहना चाहिए। असंगियों के भी क्यों लिया? उत्कृष्ट कब होगा? पहले समय में संगी में से असंगी में आया है, और बाद में तो बंद कम होगा उनका, तो इसलिए अंतर घटित नहीं हो सकता। अब हम विशेषार्थ पढ़ेंगे इस बात का। देखो, अपने कोई साइन रखी कि 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, नीचे से 11वीं लाइन मूल में लब्धि अपर्याप्त तक मनुष्यों से लेकर, अभी हमने जो लिस्ट पढ़ी है ना, अनाहारक तक। अभी हमने लब्धि अपर्याप्त मनुष्य देखे, फिर वो इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा एक इंद्रिय देखे, फिर काय मार्गणा की अपेक्षा स्थावर काय देखे, विकल इंद्रिय वगैरह भी देखे थे, त्रस काय भी देखे थे, ये जो सारे है। तो अनाहारक तक और भी जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनके भी इसी प्रकार समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि उनमें अंतर घटित नहीं होता, यही समझना चाहिए। हर एक का काल अलग अलग होगा, उसका उत्कृष्ट अपने अपने योग्य होगा, परंतु उनमें अंतर नहीं घटित होता। देवों की बात अभी हमने देखी नहीं, उसको पढ़ेंगे यहां, फिर उसका अर्थ देखेंगे वहां विशेषार्थ। देव गति में मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, जैसे अन्यत्र घटित होता है। देवों में उत्कृष्ट अंतरकाल कैसे होगा? उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य अंतरकाल, यानी पहले उत्कृष्ट स्थिति बांधी, फिर अंतर्मूर्त तक नहीं बांधी, और फिर बांधी, तो ये जघन्य अंतर घटित हुआ। उत्कृष्ट अंतर घटित करने के लिए कैसे सोचेंगे, जरा इन लोगों को सोचने दो। हाँ, बहुत बाद में वो अंत में जाके बांधी, पहले शुरू में उत्कृष्ट स्थिति बांधी थी पर्याप्त होने पर, फिर पूरी आयु तक नहीं बांधी उत्कृष्ट स्थिति, फिर लास्ट में जाके बांधी, तो वो उत्कृष्ट अंतर होगा। तो उसको कैसे कहेंगे? अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति में कुछ कम। यहाँ क्या लिखा है देखते हैं। देवगति में, अभी यहाँ सामान्य से कथन किया है, देवगति में मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 18 सागर है। अभी ये जो साधिक 18 सागर लिखा है वो क्यों लिखा है उसको फिर हम देखते हैं। जघन्य अंतर तो अंतर्मूर्त हमने अभी देखा, उत्कृष्ट कैसा लेना? अपने अपने स्थिति से कुछ कम लेना है, बात सही है ना? तो ये कहाँ तक लिया उन्होंने? 18 ने सहस्रार तक, 12वें तक। ऊपर से क्यों नहीं लिया? नहीं, मिथ्या दृष्टि तो ग्रेवेक तक है, शुक्ल लेशा, तो उसका उत्कृष्ट जो है वो अंत कोड़ा कोड़ी हो सकता है, इसलिए इसको लेना। तो यहाँ कुछ कम क्यों नहीं कहा, साधिक क्यों कह दिया? नहीं, अधिक आयु क्यों? हाँ, घातायुष्क जो है, देखो जैसे पहले स्वर्ग का जीव है, अभी पहले स्वर्ग की आयु कितनी? अधिक से अधिक 2 सागर बांधने की अपेक्षा। पर कोई ऐसा जीव होता है कि उसने अधिक आयु बांधी थी और बाद में वो आयु का घात कर दिया, पहले ही पूर्व भव में ही बांधने के बाद वो घातायुष्क, यानी उसके परिणाम के कारण उसकी आयु कम हो जाती है वहां, तो कितनी हुई, नीचे की जैसी हुई। मान लेते बांधी दूसरे तीसरे स्वर्ग के, दूसरे ने चौथे पांचवे की या तीसरे स्वर्ग के योग्य, और फिर घट गई, घट गई तो नीचे के स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु दो है, उसमें कुछ अधिक हो जाते हैं, उसको साधिक कहेंगे। हाँ, आधा सागर सम्य दृष्टि हो गए तो आधा सागर ज्यादा, फिर उसमें अंतर्मूर्त कम होता है, तो अंतर्मूर्त कम आधा सागर ज्यादा होती है वहां की उत्कृष्ट आयु से। और मिथ्या दृष्टि में कितनी ज्यादा होती है, पल्ले के असंख्या तो विभाग प्रमा, तो इसको कहते हैं साधिक। ऐसा कहां तक हो सकता है, तो ऐसे सहस्रार तक के 18 सागर के आयु तक ही वो घातायुष्क से थोड़ा ज्यादा, 18 में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा नहीं, आधा सागर और अंतर्मूर्त कम आधा सागर, इसलिए उसको साधिक में लिया। जितनी आयु है उसमें भी थोड़ा कम ही लेना है। हाँ, अभी मिथ्या दृष्टि लेना है तो साधिक में उसको ही लेना है, तो पल्ले का असंख्या तो भाग से अधिक, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाला तो मिथ्या दृष्टि है। घातायुष्क किसके होते हैं उसकी बात हमने दो प्रकार से की। सम्यक दृष्टि की आयु घटेगी तो नीचे के स्वर्गों के आयु से आधा सागर ज्यादा, अंतर्मूर्त कम आधा सागर ज्यादा, और मिथ्या दृष्टि की आयु घटेगी तो नीचे के स्वर्गों से पल्ले का असंख्यात भाग ज्यादा, इतनी होती है। यानी 18 सागर में कितनी बढ़ेगी, पल्ले का असंख्यात भाग ज्यादा बढ़ेगी, उसको साधिक में लिया। परंतु उस जो साधिक उसकी उत्कृष्ट आयु है उसमें कुछ कम करना, क्योंकि पहले पर्याप्त हुआ, फिर उत्कृष्ट स्थिति बांधी, फिर उसके बाद वो अनुत्कृष्ट में रहा, फिर आयु के अंत में जाकर फिर उत्कृष्ट स्थिति बांधी, इसके लिए जितना आवश्यक है उसको घटाना, वो साधिक में से भी, फिर भी वो रहेगी तो साधिक ही, क्योंकि हम घटाएंगे तो अंतर्मूल घटाएंगे, और वो तो पल्ले का असंख्या तो भाग ज्यादा है, इसलिए टोटल उसके साधिक ही कहेंगे। तो ये किसका, उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 18 सागर है, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल ओघ के समान है। अनुत्कृष्ट स्थिति का अंतर कब कहेंगे, जब उत्कृष्ट स्थिति का बंद हो रहा है, वो कम से कम एक समय तक बंधेगा, तो यहाँ अंतर एक समय का घटित होगा, और लगातार बंधेगा उत्कृष्ट तो अंतर मुहूर्त तक बंधेगी, तो अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर कितना है, एक अंतर मुहूर्त। ओघ में देखा था ना हमने, ख्याल में आता है कि नहीं आता है, हाँ? बताते हैं तो फिर दोबारा हमको स्मरण में आता है कि नहीं, इतना देखना है, क्या बिल्कुल ही नहीं समझता है ये बात देखनी है। पर वो याद में नहीं रहता, वो कोई बात नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट उत्तर अंतर और काल, इसमें जंबलिंग तो होता है, कभी कभी हम काल की अपेक्षा सोचते हैं और यहाँ अंतर की बात चल रही है। अब भवनवासियों से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों के स्वर्ग, वो बराबर अस्पष्ट हुआ है उसका, स्वर्ग के तक के देवों के उत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल कितना है, तो जघन्य अंतरकाल अंतरलाल हुआ, अंतरकाल अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। पहले उन्होंने सामान्य देवों में बता दिया उत्कृष्ट कितना है, तो साधिक 18 सागर। अब यहाँ कहते भवनवासी से लेकर वहां तक अपने अपने स्वर्ग का लिखना, भवनवासियों की अपनी उत्कृष्ट स्थिति, व्यंतरों की अपनी, ज्योतिषों की अपनी, सौधर्म ईशान की अपनी, तो वहां सौधर्म ईशान के लिए साधिक 2 सागर कहेंगे, तो अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति लेना वहां पर। अनुत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल ओ के समान है, कितना देखा अभी अभी हम, एक समय और अंतर्मूर्त। उत्कृष्ट स्थिति में कुछ कम बताते हैं, परंतु इनकी आयु कुछ साधिक होगी ना, पल्ले के असंख्यात विभाग से अधिक है, उसमें से कुछ कम कर देना, कुछ कम कर देंगे तो भी वो सादिक नहीं गिनाएंगे। तो यहाँ क्या लिखा, अपनी अपनी जो उत्कृष्ट स्थिति है, कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट कितनी स्थिति कितनी है, सादिक दो सागर, सादिक जो कुछ है वहां पर, इसलिए उसको अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति कही। अब ये देवों की बात हम विशेषार्थ में पढ़ते हैं। नीचे से नौवीं लाइन विशेषार्थ की 50 पृष्ठ पर, देवों में 12वें स्वर्ग तक, जिसका नाम है सहस्रार स्वर्ग तक ही मुनि का उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। ऊपर मिथ्या दृष्टि नहीं, ये बात नहीं है, मिथ्या दृष्टि तो ग्रवेक तक है, उनका उत्कृष्ट स्थिति बंध नहीं होता है। हमने देखा था शुक्ल लेशा भी होती है वहां पर और उत्कृष्ट स्थिति बंध नहीं होता, तो 12वें स्वर्ग तक ही उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है और 12वें स्वर्ग की उत्कृष्ट स्थिति साधिक 18 सागर है। वो साधिक कैसी, इसके एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं किया क्योंकि वो इसके यहाँ का विषय नहीं है। हमने देखा ना घातायुष्क होकर वो साधिक हो गई है, अतः सामान्य से देवों के उत्कृष्ट स्थिति का, जब सामान्य सभी देवों में बात करेंगे तो जहां कहीं होती उसको कहेंगे, तो सभी देवों की बात आती है तो कितना है, तो साधिक 18 सागर कहेंगे। तो सामान्य से देवों के उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 18 सागर कहां है। इसी प्रकार भवनवासियों से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में जितनी जितनी उत्कृष्ट स्थिति हो, जिस स्वर्ग की जितनी उत्कृष्ट स्थिति है जिस देवलोक की, वहां उसको लेना, उसमें कुछ कम कर देना, उसमें से कुछ कम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतरकाल जानना चाहिए। अभी आगे और जितनी मार्गणाएं बतलाई, वो जितनी बतलाई उसको देखेंगे फिर। उनचास पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ, पंचेंद्रिय। अब ये गतियों की बात हो गई, नारकी तिर्यंच मनुष्य और देव बता दिए, अब इंद्रिय मार्गणा चलेगी आप, क्योंकि ऐसा लगता है ना ऊपर भी पंचेंद्रियों की बात आई फिर दोबारा लेते, वहां तिर्यंचों में पंचेंद्रियों को घटित किया था, अब यहाँ एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय ऐसा देखेंगे। पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्तक त्रस और त्रस पर्याप्तक जीवों के मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, क्योंकि ये सभी जीव है उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाले हैं। उनका अंतर कब घटित होगा, जब वो अनुत्कृष्ट स्थिति का बंध कर रहा है या उत्कृष्ट बंधने के बाद अनुत्कृष्ट हो गया और दोबारा उत्कृष्ट करेंगे तब, तो जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त होता है और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। तो पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति, पर्याप्तों की उत्कृष्ट स्थिति उसमें घटाना, उसमें कुछ कम कर देना, उसका उत्कृष्ट अंतर होगा, उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतर। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल ओघ के समान है, कितना है, जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर मूर्त। इसी प्रकार स्त्रीवेदी पुरुषवेदी चक्षुदर्शनी, क्योंकि इनमें उत्कृष्ट बंध हो सकता है, जब हम स्त्री वेदी कहते हैं तो वहां भले संगी असंगी है परंतु जहां उत्कृष्ट बंध है उनकी अपेक्षा ले लेंगे उसमें। चक्षुदर्शनी कहते हैं तो वहां पंचेंद्रियों में उत्कृष्ट बंध है तो वे सब चक्षुदर्शनी है, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय दोनों है, जहां उत्कृष्ट बंध है उनकी बात देखेंगे हम। कृष्ण आदि पांच लेशा वाले, क्योंकि शुक्ल लेशा में तो उत्कृष्ट है वो अंत कोड़ा कोड़ी होता है, इसलिए यहां इनको लिया। संगी और आहारक जीवों के कहना चाहिए, क्योंकि अनाहारक अवस्था में ये इतना उत्कृष्ट बंध नहीं होता है, इसलिए यहाँ इसको लिया। और वहाँ तो हमने देखा था जहाँ अनाहारक जीव है कारमान का योग है वहाँ तो अंतर ही घटित नहीं होता। हाँ, पंचेंद्रियों की उत्कृष्ट स्थिति जो है वो 1000 सागर हमने पहले देखे थे ना, निकालो निकालो। पंचेंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल आप देख रहे हैं ना, कहीं 30-27 के पश्चात कहीं देखा था, 30 पृष्ठ पर उत्कृष्ट स्थिति का सत्व काल है। हाँ, उत्कृष्ट स्थिति बताई वहां पर, बरोबर है, 30 पृष्ठ पर, पेज नंबर 30, हाँ नीचे विशेषार्थ, नीचे वाला विशेषार्थ कितना है, पंचेंद्रियों की उत्कृष्ट स्थिति पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 1000 सागर। ये जब पंचेंद्रिय कहते तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आ गए। पंचेंद्रिय पर्याप्तकों की उत्कृष्ट स्थिति 100 सागर पृथक्त्व, जैसे हमने पुरुष वेदी में देखा था। त्रस कायिकों की उत्कृष्ट स्थिति पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 2000 सागर, और त्रस कायिक पर्याप्त लेंगे तो 2000 सागर। तो इसमें से कुछ कम करना वो उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतर होगा। पंचेंद्रियों में जो लगातार रहने का काल है वहां गिना है, कितना देखा अभी हमने, पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 1000 सागर। ये सामान्य के लिए, सामान्य पंचेंद्रियों के लिए, और पर्याप्तों के लिए 1000 सागर नहीं, 100 सागर पृथक्त्व, 100 सागर पृथक्त्व, 100 सागर कहो या देखो, पहले हमने 1000 सागर देखे थे, अब 100 सागर पृथक्त्व में हम जैसे 10 100 सागर हुए ना, 100 सागर पृथक पर हुए, उसमें से कुछ कम कर दो। हाँ, कहाँ पर, हाँ तो जहां बंद नहीं वहां अंतर भी नहीं है, ये तो बता चुके। ऐसा नहीं है, वहां ये बात है, उस मार्गणा में जितना उत्कृष्ट होगा उसको लेना। तो उस मार्गणा में उत्कृष्ट क्या बंद की अपेक्षा हो सकता है, क्या पहले बांध कर आया उस अपेक्षा से हो सकता है? तो ऐसी कितनी मार्गणाएं की संगियों में बांध कर यहां आया है जीव, उसकी अपेक्षा लेनी है। तो वहां दोबारा बंद नहीं होगा तो अंतर भी नहीं होगा। तो कंफ्यूजन क्या है आपका? अकेला उत्कृष्ट बंध के देखो सर, उत्कृष्ट स्थिति कब प्राप्त होती है कि जब उत्कृष्ट बंध किया जाता है। जिस मार्गणा में पूर्व से बंधी हुई उत्कृष्ट स्थिति हमने गिनाई थी, उसके लिए फिर उतनी उत्कृष्ट स्थिति होने का अन्य कोई उपाय है ही नहीं है, क्योंकि वहां बंध उतना होता नहीं है, इसलिए उसमें अंतर घटित होता नहीं है। जहां जहां संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि है वहां वहां उत्कृष्ट, उनके योग्य जो कोई है उत्कृष्ट बंध हो सकता है, बीच में नहीं होगा फिर दोबारा भी हो सकता है, वहां ही अंतर घटित होगा, ये बात यहां कह रहे हैं। अभी जघन्य की जब बात करेंगे तो एक केंद्रीय में बंध की अपेक्षा और वो स्थिति की अपेक्षा वो जघन्य की ओर घटित करेंगे। अपनी अपनी मार्गणा में जो उत्कृष्ट या जघन्य है उसकी बात चल रही है। उत्कृष्ट हमेशा उत्कृष्ट जब गिनेंगे तो स्थिति को ही गिनना है, वो किस काल में होता है और क्यों होता है, तब हम बंध का नाम लेते हैं। जहाँ बंद इतना उत्कृष्ट नहीं है जितना उस मार्गणा में उत्कृष्ट हो सकता है, वो अन्य मार्गणा में से उस मार्गणा में आने पर वहाँ उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है, ऐसी उत्कृष्ट स्थिति उस मार्गणा में रहते हुए नहीं होगी, क्योंकि वो तो घटते चली जाएगी, क्योंकि वहाँ इतना बंद नहीं है जितना उसका उत्कृष्ट था, ये बात चल रही है। अब यहाँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने 49 पृष्ठ पर अंतिम लाइन पढ़ी थी, उत्कृष्ट अंतरकाल उत्कृष्ट स्थिति का तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल ओघ के समान है। इसी प्रकार यहाँ भी हमने पढ़ा था, स्त्रीवेदी पुरुषवेदी चक्षुदर्शनी कृष्णादि पांच लेशा वाले संगी और आहारक जीवों के कहना चाहिए। अब ये भी पैराग्राफ पढ़ते हैं, पांच मनोयोगी पांचों वचन योगी पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी काय योगी औदारिक काय योगी वैक्रिक काय योगी क्रोधादि चारों कषाय वाले जीवों के मुनि की उत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल नहीं है। अब ये जो उत्कृष्ट स्थिति बांधते तो है, इन सभी मार्गणाओं में उत्कृष्ट स्थिति का बंध तो होता है, उत्कृष्ट स्थिति का बंध होने के बाद अंतर्मुहूर्त काल तक उत्कृष्ट स्थिति नहीं बंधेगी और दोबारा बंधेगी, परंतु तब तक इनका योग पलट जाएगा, योग तब तक वही नहीं रहेगा। इस अपेक्षा से यहाँ अंतर नहीं है ऐसा कहा, उत्कृष्ट स्थिति नहीं ये बात नहीं कही, उत्कृष्ट बंध नहीं ये बात नहीं कहा, परंतु यहाँ अंतर कब होगा कि उसी योग में रहते हुए दोबारा अगर उत्कृष्ट बंध हो तो। परंतु यहाँ जो अनुत्कृष्ट का अंतर्मुहूर्त का काल है उससे वो योग का काल छोटा है, इसलिए उसी योग में रहते हुए उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हो और अनुत्कृष्ट से फिर उत्कृष्ट हो इतना काल वहाँ संभव नहीं है। इसलिए यहाँ जितनी भी ये मार्गणाएं बताई है अभी, हाँ देखते पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी काय योगी। अब आप कहेंगे औदारिक काय योग तो लंबे काल तक चलता है, कहाँ चलता है, एक इंद्रिय में चलता है, उनकी उत्कृष्ट स्थिति कब होती है, पहले समय में जो देव में से आया हुआ है, अभी वो भी औदारिक मिश्र में आएगा, कारमांड में आएगा, परंतु वहाँ भले औदारिक काय योग के लिए भी जितनी यथा योग्य है उतनी वहाँ होगी, तो भी अन्य पर्याय में से आया हुआ जीव है। अब कोई जहाँ उत्कृष्ट बंध होता है उसका ले लेते हम औदारिक काय योग, तो वो तो पलट जाएगा। संगी पंचेंद्रियों में भी मनुष्य तिर्यंचों में औदारिक काय योग तो है, परंतु उसका अंतर्मुहूर्त छोटा है। आप कहेंगे औदारिक काय योग एक इंद्रियों में बड़ा है, परंतु उसमें वहाँ इतना बंध नहीं होता, जितना वो बांध कर आया वो तो घटता चला जाता है। जब औदारिक काय योग में हम उत्कृष्ट लेना है तो हमें जहाँ कुछ उत्कृष्ट होता है उसी को लेना पड़ेगा, तो वहाँ तो हम संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच या मनुष्यों को लेंगे वहाँ पर, ख्याल आया ना। तो इसलिए औदारिक काय योगी को भी घटित किया। हाँ नपुंसक वेद में, नपुंसक वेद में कैसा होगा, अनुत्कृष्ट का अंतर देख रहे कि उत्कृष्ट का अंतर, उत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर कितना होता है, जो अपनी अपनी स्थिति प्रमाण। हाँ तो पहले नपुंसक वेदी में संगी पंचेंद्रिय था, नपुंसक वेदी था, उत्कृष्ट बंद किया, फिर वो कालांतर में से नपुंसक वेद तो कायम रहा, एक इंद्रिय में गया, तो इतने असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल बिताया, अनुत्कृष्ट ही रहा वो, फिर अंत में जाके फिर वो पंचेंद्रिय हुआ, उत्कृष्ट बंद किया। हाँ तो उसका अनंत काल होगा। हाँ देखो ओग निकालो, ऐसे मति ज्ञान मति अज्ञानी में भी घटित होगा, अभवियों में भी घटित होगा, अचक्षु दर्शनियों में भी घटित होगा। ओग में हम देखते हैं 48 के पहला पैराग्राफ, उत्कृष्ट अंतरकाल अनंत काल है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है, दूसरी तीसरी लाइन है ना, नपुसक वेद में ऐसे ही घटित देखो, वहाँ मार्गणा भी बताइए, तिर्यंच में घटित होगा, काय योग में घटित होगा, नपुसक वेदी में घटित होगा। हाँ मत्स्य ज्ञान देखो यहाँ काय योग में घटित किया, हाँ काय योग में तो घटित होगा क्योंकि काय योग रहा, परंतु उत्कृष्ट अंतरकाल नहीं होता, काय योग कैसे लिया पर पंचमन पंचवची काय जोगी नथी अंतरम, उत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल नहीं है, काय योगी को कैसे लिया वहां पर। काय योगी में तो अंतर घटित होता है, यहाँ फिर क्यों लिया उत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल नहीं होता मैं। कहाँ लिखा है अनुत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल? हाँ आप पढ़ना, दूसरी लाइन पढ़ना, 48 पृष्ठ की दूसरी लाइन क्या है? जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त किसका? उत्कृष्ट स्थिति का, और उत्कृष्ट अंतरकाल कितना है? अनंत काल है, जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है। अनुत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल कितना है? एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। इसी प्रकार का अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों का इसी प्रकार जहाँ घटित होता है, तो वहां तो काय योग को लिया वहां पर, और वो घटित भी होता है। हमने देखा, देखो वहां किस किस को लिया, तिर्यंचों में अनंत काल घटित होता है, काय योगी में, क्योंकि काय योग तो लगातार काय योग ही है उनके, वहां कोई वचन योग मनोयोग की बात ही नहीं, बीच में लगातार काय योग। तो काय योग में घटित होता है अंतर? हाँ होगा, औदारिक काय योग में नहीं घटित होगा। ये देखो यहाँ हमने 48 पृष्ठ पर काय योग को किस में लिया? जहां उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतरकाल घटित होता है उसको लिया है, नपुंसक वेदी को लिया, मत्स्य ज्ञानी को लिया, श्रुता ज्ञानी को लिया, असंयत को लिया, अचक्षु दर्शनी, भव्य अभव्य और मिथ्या दृष्टि, जहाँ कोई ये संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त उसमें अवस्था हो सकती है और दोबारा उत्कृष्ट बंद हो सकता है, ऐसे जीव लिए। इसलिए यहाँ जो काय योगी लिखा है ना, वो पेंसिल से उसको मूल में प्राकृत में भी उन्होंने काय योगी लिखा है। एक मिनट, काय जोगी ओराली वेयुवीय चत्तारिक मुनि उपकसनत्य अंतरम, चत्तारिक क्या लिखा है? चारो चत्तारिक कसायनम। हाँ मेरे ख्याल से काय योगी जो लिखा है वो औदारिक काय योगी, वैकृत काय योगी, वैकृत मिश्र काय योगी, आहारक काय योगी, वो काय जो है वो आगे वालों के लिए लिखा है उन्होंने, अकेला काय योग नहीं लेना है वहां पर। यानी वो काय योगी जो है ना, वो औदारिक काय योगी ऐसा ले सकते हैं, विशेषार्थ में देखेंगे। देखो पहले ये चार लाइन पढ़ लेते, हमने क्या देखा? पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, अभी काय योगी अकेला नहीं लेना, उसको तो हमने अंतर घटित किया था, उत्कृष्ट अंतर अनंत काल घटित किया था। औदारिक काय योग अकेला लेना, वैकृत काय योगी में, क्योंकि वैकृत काय योग भी अंतर्मूर्त का है, पलटते जाता है, उसमें उत्कृष्ट बंद हो फिर अनुत्कृष्ट हो फिर बंद हो, इस नहीं बन सकता। क्रोधादि चारों कषाय वाले जीवों के मोनी की उत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल नहीं है। हाँ, ये काय योग जो है ना, वो ऊपर जो है ना पंचमन पंचवची, और काय में किस किस को लेना, तो औदारिक काय वैक्रिय काय ऐसा लेना वहां पर, उसका अर्थ आगे के लिए लेना। यानी काय ये कॉमन शब्द, औदारिक काय और वैक्रिक काय के लिए वो काय बता दें। मनोयोग पांचों लिए, वचन योग पांचों लिए, और काय योग में दो लिए, ऐसा अर्थ लेना उसका। ऐसा लिखता है काय योगी में औदारिक काय योगी वैक्रिक काय योगी, वो काय योगी के बाद जो कॉमा है वो निकाल के काय योगी में औदारिक काय योगी वैक्रिक काय योगी ऐसा ले लो। उत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल नहीं, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल ओक के समान है। ओक के समान है एक समय, हाँ अंतरकाल। विभंग ज्ञानी जीवों के अंतरकाल सातवीं पृथ्वी में कहे गए अंतरकाल के समान है। विभंग ज्ञान प्राप्त हुआ, उत्कृष्ट बंद किया, फिर लगातार नहीं किया, फिर लास्ट में किया, तो उसको उत्कृष्ट अंतरकाल घटित होगा। अभी हम इस ओग के समान बताए ना, यानी अनुत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल तो घटित होता है, कम से कम एक घटित हो एक समय, और अधिक से अधिक उस योग में आया। एक समय से लेकर कितना भी हो सकता है, दो समय, चार समय, दस समय, जितना योग का काल है उसके पहले समय में उसको उत्कृष्ट था या अनुत्कृष्ट था, अनुत्कृष्ट का अंतर करना है। पहले समय में अनुत्कृष्ट था, फिर उत्कृष्ट कुछ समयों तक किया, अंतर्मूर्त उस योग वाले अंतर्मूर्त से छोटा अंतर्मूर्त, और लास्ट समय में फिर वो अनुत्कृष्ट हुआ, तो अनुत्कृष्ट का अंतर एक अंतर्मूर्त घटित होगा, उसके योग्य अंतर्मूर्त लेना। मैं ऊपर का पढ़ रही थी, मैंने अभी ऊपर का पढ़ा। विभंग ज्ञानी जीवन के अंतरकाल सातवीं पृथ्वी के अंतर समान है। अभी हम यहाँ नीचे पढ़ेंगे विशेषार्थ के नीचे से पांचवी लाइन, आगे और भी जितनी मार्गणाएं बतलाई है उनमें भी इसी प्रकार विचार कर खुलासा कर लेना चाहिए। उन्होंने जो स्त्री वेदी पुरुष वेदी आदि पहले बताए थे ना, वहां हाँ, पांचों मनोयोग, पांचों वचन योग। अभी यहाँ भी काय योग में ऐसा करो, कॉमा निकाल दो और काय योग में औदारिक काय योग वैक्रिक काय योग, और चारों कषायों में उत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल नहीं होता, क्योंकि इनका काल इतना कम है जिससे इनके काल के भीतर दो बार यानी दोबारा उत्कृष्ट स्थिति नहीं प्राप्त होती। किंतु जिसने अनुत्कृष्ट स्थिति के साथ इन मार्गणाओं को प्राप्त किया और मध्य में एक समय तक या अंतर्मूर्त काल तक उत्कृष्ट स्थिति का बंद हुआ, तो उसके अनुत्कृष्ट स्थिति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त प्रमाण बन जाता है। यानी जो मनोयोग में आया है अनुत्कृष्ट स्थिति के साथ आया है, एक समय पश्चात उत्कृष्ट स्थिति का बंद किया और मनोयोग पूरा होने के पहले पहले एक समय उसको अनुत्कृष्ट में वापस आ गया, तो उसका अंतर्मूर्त घटित होगा, उसका वो उत्कृष्ट अंतर होगा, अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतर। अतः उक्त मार्गणाओं में अनुत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल ओग के समान कहा। अकेले काय योग लगातार असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक औदारिक काय योग, हाँ उससे कम है, क्योंकि मनोयोग हो, वचन योग हो या काय योग हो, वो पलटता रहता है। ऑफ कोर्स उसके जो अंतर्मूर्त अधिक से अधिक जो हर एक के अलग अलग है, आपको याद होगा उस समय ज्ञान चंद्रिका में हमने देखे थे, हर एक का अंतर्मूर्त ही काल है, फिर भी उसमें से छोटा बड़ा होता है। यद्यपि कायोग और औदारिक कायोग का काल बहुत अधिक है, पर यह काल एकेंद्रीय और पृथ्वीकायिक जीवों के ही प्राप्त होता है, अतः इनमें भी उत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल संभव नहीं। हाँ? नहीं, मगर वहाँ अगर हम उसका भाषांतर ठीक करेंगे ना, तो ये एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं। काय योग में किस किस को लेना, मनोयोग में पांचों लिए, वचन योग में पांचों लिए, काय योग में कितने लेना, औदारिक और वैकिरिक लेना, तो घटित होता है, क्योंकि आहारक में तो अंतर घटित नहीं होता, वो तो हम देख चुके। वैकिरिक मिश्र में अंतर घटित नहीं होता, क्योंकि उत्कृष्ट है वो पहले समय में होता है। कारमान का काल इतना छोटा है, उसमें भी घटित नहीं होता है। तो काय योग पहले वो बता चुके हैं, काय योग जब कहते हैं सामान्य से, तो काय योग में पंचेंद्रियों को भी काय योग तो होता ही है। तो पंचेंद्रियों में काय योग था, मनोयोग या वचन योग होने के पहले वो काय योग में ही मरकर एकेंद्रिय आदि पर्याय में चले गए, काय योग का काय योग ही रहा, भले कारमान हुआ मिश्र हुआ फिर भी काय योग ही रहा, और अंत में जाके फिर पंचेंद्रियों में आए, कारमान मिश्र करके काय योगी हुए, और वहां उन्होंने संगी पंचेंद्रियों में उत्कृष्ट बंध किया, तो वहां तो घटित होता है। आपने निकाल दी। हाँ, औदारिक काय योग के लिए जो यहां बताते हैं कि ये काय योग को निकाल देना, यद्यपि औदारिक काय योग का काल बहुत है, अभी ऐसा करना। वो बहुत कहां पर है, एकेंद्रियों में है, और पृथ्वी कायिकों के औदारिक का मैक्सिमम काल कहां है, पृथ्वी कायिकों में, अतः इनमें भी उत्कृष्ट स्थिति का अंतर काल नहीं होता। उनका उत्कृष्ट स्थिति तो हो सकती है, क्योंकि पृथ्वी कायिक में आया है देव में से एक समय में, उत्कृष्ट काल तो उत्कृष्ट स्थिति तो है, दोबारा उतनी उत्कृष्ट स्थिति नहीं हो सकती है। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति अंतरानुगम समाप्त हुआ। उत्कृष्ट स्थिति में कितना अंतर पड़ सकता है, उत्कृष्ट जब कहते हैं तो अनुत्कृष्ट को भी साथ में लेते हैं। अब जघन्य स्थिति में अंतर घटित करेंगे, तो ओघ में जघन्य स्थिति का अंतर कितना होगा, जयबेन बोलो आप। ओग की अपेक्षा जघन्य स्थिति का अंतर पूछ रही हूं, काल नहीं। कब होता है जघन्य स्थिति, कब होती है, क्षपक के अंतिम समय में। क्या दोबारा उतनी जघन्य प्राप्त हो सकती है, सवाल ही नहीं है। हाँ, तो उसमें अंतर नहीं होगा। अजघन्य का अंतर होगा कि नहीं होगा, अजघन्य भी अजघन्य हुई फिर जगन नहीं होगा, तो ओघ में तो होगा ही नहीं। देखो अभी यहां पढ़ते हैं। अब जघन्य स्थिति अंतरानुगम प्रकृत है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मुनि की जघन्य और अजघन्य स्थितियों का अंतरकाल नहीं है। ये क्यों नहीं है वो हमें देखना चाहिए, क्योंकि जघन्य होता है अंतिम समय में, क्षपक के अंतिम समय में। अजघन्य का अंतर कब होगा, जब एक समय के लिए जघन्य करके फिर जघन्य हो जाए, तब वो हो सकता नहीं। और जघन्य का अंतर कब होगा कि जघन्य में से अजघन्य हो फिर दोबारा जघन्य करे, तो वो भी नहीं हो सकता। ओघ की अपेक्षा तो हो ही नहीं सकता। अब मार्गणाओं में देखेंगे हम। इसी प्रकार अब ये जो कथन है ना, इसी प्रकार दूसरी पृथ्वी से लेकर छठी पृथ्वी तक के नारकी, इनमें जघन्य कब होता है, अंतिम समय में। पहली पृथ्वी में कब होता है जघन्य, असंगी में से आया हुआ, उसका भी अंतर का सवाल नहीं है। हाँ, दूसरे विग्रह में। हाँ, तो दूसरे विग्रह में हो सकता है, वापस उसका भी नहीं होगा। हाँ तो यह क्या कहते हैं, इसी प्रकार दूसरी पृथ्वी से लेकर छठी पृथ्वी तक के नार की, देखो क्यों छोड़ा, मैं अभी मैं सवाल आपसे पूछूंगी, पहली पृथ्वी को क्यों छोड़ा, कौन कहना चाहते हैं? देवेंद्र भाई को पहला चांस। हाँ आप क्या कहते हैं? मैं कहती हूँ होगा अंतर, नहीं बताया इसका अर्थ होता है तो कैसे होगा? आपने उत्तर दे दिया है, आपको ख्याल नहीं है आपने क्या उत्तर दिया है। देखो हमने पहली पृथ्वी में क्या कहा था, पहले समय में अजघन्य था, दूसरे समय में जघन्य हुआ, फिर तीसरे समय से आयु के अंत तक अजघन्य रहा, ख्याल है? फिर से हमने देखा था जघन्य स्थिति पहले पृथ्वी में पहले नरक में कैसे होती है, तो कोई असंगी जीव वो उसने जो स्थिति घटाई कम थी और फिर वो विग्रह में आया है तब उसको नारकी कहेंगे हम, तो पहले समय में उसका अजघन्य था, दूसरे समय में जघन्य हो गया, क्यों? क्यों पहले समय में बंध तो कम ही कर रहा था और स्थिति एक निशेक उसकी गल गई, क्योंकि जितनी स्थिति थी उससे कम बंध हो रहा है तो स्थिति एक गल गई, यानी वहां तो थी और दूसरे समय में नहीं है तो दूसरे समय में जघन्य हुआ, तीसरे समय में तो वो नारकी के योग्य बंध करेगा, जब तक कारमान का योग चल रहा है तभी, पहले समय में अजघन्य था, दूसरे समय में जघन्य हुआ, तीसरे समय में फिर अजघन्य हुआ, उसका अर्थ अंतर कितना पड़ा अजघन्य में एक समय का, यहां अजघन्य की बात चल रही है। ऐसा अंतर दूसरी पृथ्वी से नहीं होता, क्योंकि दूसरी पृथ्वी में जघन्य होता ही है अंतिम समय में, अब उसका जो भव मिट गया अभी क्या करेंगे, वहां अंतर घटित नहीं होगा। तो कहते इसी प्रकार दूसरी पृथ्वी से लेकर छठी पृथ्वी के नार की, यानी पहली पृथ्वी में तो एक समय का अंतर होगा, किसका अंतर? अजघन्य का अंतर, एक समय के लिए होगा। ये ऐसे मार्गणाएं बताई है जहां जघन्य का भी नहीं अंतर होता और अजघन्य का भी नहीं होता। ओघ में क्या आया है कि जघन्य का अंतर नहीं होता और अजघन्य का भी अंतर नहीं होता, ऐसी ही पोजीशन और कहां कहां है वो बात बता रहे हैं। तो दूसरी पृथ्वी से लेकर छठी पृथ्वी तक के नार की, ये हम कर लेंगे इसको यहीं से। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकन हो सदा देत हो रू। अश्विन भाई